ओम शांति। आज का दिन बहुत 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 भाग्यशाली दिन है। भगवान इस धरा पर आने वाला है, लेकिन भगवान के भेजे ये फरिश्ते जो आज आपकी सभा में आए हैं, आप देख रहे हैं, एक बार तो करतल ध्वनि से स्वागत स्वागत और अभिनंदन। आप सबको पहले भी सूचना दी थी कि भ्राता निर्वैर जी हॉस्पिटल जैसे तीर्थ की एक यात्रा करके आए, और आप सबकी शुभ भावना और शुभकामना से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। आज मैंने निवेदन किया था कि क्लास कराएं या ना कराएं, कम से कम दर्शन तो दें, और बड़ी मेहरबानी है कि वो हमारे बीच पहुंचे। न केवल उन्होंने दर्शन देना स्वीकार किया, वरन आपसे गुफ्तगू करना भी स्वीकार किया है। तो मैं एक के बाद एक परिचय आपके सामने रख रही हूं। वैसे हमारा ये ब्राह्मण परिवार भ्राता जी को किसी न किसी रूप में जानता ही है। भ्राता जी ने जीवन के इंजीनियरिंग करने के बाद 9 वर्ष नेवी की सेवा में व्यतीत किए, जो एक किनारे से एक क्षितिज तक आंखों को राहत देता है। उस सागर के दामन में रहे, आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर रहे, और उसके बाद चूंकि आध्यात्मिक अभिरुचियां थी, आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति एक अंदर लगाव था, आप बाबा के सानिध्य में आए 1959 में। और बाबा के समीपता में हर कार्य, हर सेवा, हर कसौटी पर खुद को कसते हुए आखिर तो वो उस नौकरी को तिलांजलि दे दी। 1962 में आप पूरी तरह से बाबा के समीप आकर हमारे मुख्यालय में अपना स्थान ग्रहण कर लिए। वो समय था एक अच्छे बैट्समैन की तरह कि कभी वो पराजित नहीं होता, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता। आपने एक अपराजेय व्यक्तित्व धारण किया, और सच पूछिए तो आप साकार में प्रेरणा के स्रोत रहे। बच्चों का यहाँ प्रारंभ में बहुत पहले एक छोटा सा ग्रुप आया करता था गर्मियों में, और उस बाल शिविर से होते होते आज बहुत व्यक्तित्व विकास शिविर बन गया। आप देखिए एजुकेशन विंग बन गई, आप उसके चेयरपर्सन हैं, साथ ही साथ ब्रह्मा कुमारीज के कार्यक्रमों में जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 4 चांद लगे हैं, तो भ्राता जी के निर्देशन में वहां भी सेवाएं दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती गई। एजुकेशन विंग के साथ वर्ल्ड रिन्यूअल जो आप सबके हाथ में आती है, उसके संपादन में सक्रिय योगदान आपका रहता है। एक बात और कहना चाहूंगी कि ये रहमो करम का फरिश्ता, या तो हम भगवान को कहते हैं कि दरियाए रहम है, और या फिर हमारे जमीन पे ब्राह्मण परिवार के बीच में हमारे निर्वैर भाई रहमो करम का दरिया है। आप जो ग्लोबल हॉस्पिटल, ट्रामा सेंटर, बहुत सी मेडिकल गतिविधियां देखते हैं जो आपके निर्देशन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चल रही हैं, इतना ही नहीं बेगमपुर के बादशाह हैं। आपके लिए कहना चाहूंगी कि दुआओं से दामन ये भरपूर है। सत्य है, शिव है, सौंदर्य है, हर हाथ उठता है दुआ के लिए। आपके सब अपने हैं, क्योंकि आप निर्वैर हैं। दादियों के प्रिय, हमारे याद आता है जब भी भ्राता निर्वैर जी यहां मंच पर आते हैं तो मुझे दादी प्रकाशमणि जी साकार में नजर आती हैं। बहुत सानिध्य पाया, और एक धर्म पुत्र की तरह हर आवाज को साकार करने का प्रयास भ्राता निर्वैर जी ने किया। जब भी दादी जी ने कुछ कहा और निर्वैर जी ने उसे साकार किया। तो आदरणीय भ्राता निर्वैर जी हमारे बीच, हमारे दूसरे फरिश्ते भ्राता आमिर चंद जी, आप भी इंजीनियर रहे, आपने भी भारतवर्ष की सरकार को सेवाएं दी, लेकिन मन नहीं माना ईश्वरीय सरकार के बिना। आप जब बाबा के ज्ञान में आए और उसके बाद कितने दिन करते छोड़ करके बाबा के बन गए, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, और इतना ही नहीं जम्मू कश्मीर, आपने चारों दिशाओं में सेवाएं दी। साथ साथ विदेशों में भी सेवाएं दी। हमारी सोशल विंग है, उसके आप चेयरपर्सन हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं, और आगे क्या कहूं, पंजाब के बारे में बहुत फेमस है कि शेरे पंजाब हुआ करते हैं। आदरणीय दादी चंद्रमणि जी को हम लोग सब शेरे पंजाब के नाम से जानते थे। दादी चंद्रमणि जी की आपने पालना ली है। लग जाए जिसमें जंग वो शमशीर नहीं हूं, हो जाए कैद फ्रेम में वो तस्वीर नहीं हूं, भ्राता अमीर चंद का व्यक्तित्व ऐसा है। अभी आप आज बड़े भाग्यशाली हैं, दोनों से ही उनके अमृत वचन सुनेंगे। पहले हमारे बीच संबोधन देंगे हमारे आदरणीय भ्राता निर्भय जी।
मनोरमा बहन की बातें सुनते सुनते ऐसा लगता था कि हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। अभी इतने सुंदर ढंग से परिचय दे के इंट्रोड्यूस करना क्लास के अंदर, जो ना भी किसी में हिम्मत हो तो हिम्मत आ जाए बोलने की। और आज तो मेरे को इस बात की बड़ी खुशी है कि अमीर चंद भाई, जो मेरे से सीनियर भाई हैं ज्ञान में, वो पहले आए हैं, मैं बाद में आया हूं, वो भी मुझे पूरा सपोर्ट करने के लिए साथ में आए। वैसे तो उनको अकेले ही क्लास दे देते तो पूरा टाइम वो बड़े आराम से एक डेढ़ घंटा क्लास करा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम साथ में चलते हैं, आप जितना टाइम बैठ सकते हो बैठना, बाकी टाइम जो है वो मैं उसको देख लूंगा। पर मैं सोचता हूं कि मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, 50-50। आज का दिन सारे ब्राह्मण परिवार के लिए, चाहे देश है चाहे विदेश है, चाहे हमारे बुजुर्ग दादियां हैं, चाहे बुजुर्ग भाई हैं, और चाहे आप सब भाई बहनें जो खास लक्ष्य लेकर के आए हैं कि बाबा का ये जो मिलन है ये विशेष मिलन है, तो इसमें पूरा लाभ लेंगे जा करके। उस हिसाब से सबका इस समय ये जो आपस में मिलना और इसको राता जी पास बैठे हैं, जो ज्यादा धार्मिक प्रभाग की भी सेवा में काफी इनका सहयोग रहता है, तो संत महात्माओं का जो लास्ट टुबकी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुंभ मेले में लास्ट जो होता है उसकी बहुत इंपॉर्टेंस मानी जाती है। कहते हरिद्वार में 13 अप्रैल को होती है, तो 13 अप्रैल बैसाखी का दिन है, वैसे भी बहुत भारत के लिए तो मशहूर है, खासकर नॉर्थ इंडिया के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, दुनिया के भाई बहनों को जिनको ज्ञान ठीक से नहीं है, वो हम आप सभी को देख करके उस सोचते ही रहते हैं कि ये आत्माएं कौन है, कहां से आए हैं, इनका कुछ नैनों का चेहरे का आव भाव ही कुछ दुनिया से न्यारा है। क्यों, हरेक के मन में एक बात रहती है कि इस समय पुरुषोत्तम संगम युग पर जो समय हमें मिला है, रोज मुरली सुनते हैं और मुरली के अनुसार जो इशारा मिलता है कोशिश करते हैं बाबा के साथ मन लगा करके मन को खुश रखें, मन मना भव होने से ही मन खुश हो जाता है, ज्यादा सोचने का रहता नहीं है। तो जितना जी खुश, तो क्या कहते हैं आगे, जहान खुश। तो पहले पहले जब हम मधुबन में आते हैं, चाहे कितने भी टर्न पहले आए हों, ये एक ऐसा मौका होता है जो अपने बारे में, अपनी अवस्था के बारे में, अपनी स्थिति के बारे में पुनरावलोकन करने का समय मिलता है। क्यों? ना तो इतना पावरफुल और शुद्ध वाइब्रेशन आपको कहीं और मिलेगा, इतने सारे बाबा के बच्चे, इतने सारे ब्राह्मण एक ही संकल्प से जो बैठ करके, चाहे बाबा की याद में बैठे हैं, चाहे मुरली सुन रहे हैं, चाहे क्लास सुन रहे हैं, लेकिन कोई भी आपस में विचारों के लेवल तक भी कन्फ्लिक्ट नहीं है। ऐसी हार्मनी और कहीं पर नहीं है। उसको हार्मनी को हिंदी में क्या कहते हैं, दादियों की भाषा में तो कहते हैं हारमानी, झगड़ा छूटा, वो बात अलग है।
समरसता।
जैसी समरसता बाबा के ईश्वरी परिवार में, और उसमें भी खासकर जब ऐसे मधुबन में इकट्ठे होते हैं, आपस में मिलते हैं, एक दो को मुस्कुराते हुए देखते हैं, इतना आनंद आ जाता है। मेरे जैसे जिनको थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे होती है ना, वो भी भूल जाता है कि मेरी तबीयत खराब है। तो आज का दिन ये बड़ा हम सब के लिए शुभ दिन है, और आज के दिन बाबा का मिलन कहने में तो आएगा कि ये इस सीजन का अंतिम सन्मुख मिलन होगा। लेकिन एक सवाल उठता है, बाबा ने तो कहा निरंतर मेरे मुझे याद करो, और याद का एक सहज तरीका यही है कि हमेशा अपने मन के आईने में कहो, हमेशा बाबा को देखते रहे। ये गीत बड़ा अच्छा है, बाबा तुझे देखता रहूं। तो देखता रहूं का भाव क्या, कि जितना मन के सामने बाबा का स्वरूप रहेगा, बाबा के गुण रहेंगे, बाबा की शक्तियां मन में आएंगी, तो बाप समान सहज बनते जाएंगे। और जितना बाप समान बनते जाएंगे, तो परमात्मा पिता के लिए उनकी महिमा के अंदर जो आता है, सत चित आनंद स्वरूप, वो प्रैक्टिकल उसकी कार्बन कॉपी बन जाएंगे। अपना मन भी बहुत सत्यता में, शुद्धता में, बिल्कुल इतना श्रेष्ठ बन जाएगा कि कोई भी दूसरी बात मन में लाना अच्छा ही नहीं लगेगा। और चेतन तो है ही, चलते फिरते हैं, आत्मा है ही चेतन, तो चेतन में वाइब्रेशन फैलाती रहती है। और जब मन खुश है, जी खुश है, तो उसको क्या कहते हैं, मन का सुख है। जिसको मन का सुख है, उसको बाकी सब सुख जो हैं वो ऑटोमेटिकली फॉलो करते हैं, काफी वो पीछा करते हैं, कितना भी उससे दूर जाना चाहें तो भी आएंगे। तो ये समय ऐसा है कि इस समय हम अपना भी थोड़ा चार्ट देखें। चार्ट देखने का मतलब वो पहली क्लास वाली एबीसी की बात नहीं है, लेकिन बड़ी सूक्ष्म रीति से इस संकल्प से अपने आप को देखना है कि सारे दिन में 24 घंटे में, चाहे जागृति में, चाहे सोने समय, चाहे आराम करने समय, चाहे बात करने समय, मेरी स्थिति कैसी रही। क्या निरंतर बाबा जो चाहता है, निरंतर सहज राजयोगी बन जाओ, ऐसी स्थिति बनी है। क्योंकि जब ऐसी स्थिति बनती है तो शरीर पूरा साथ देता है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको डॉक्टर फिक्स कर देते हैं, वो ठीक कर देते हैं, एकदम बहुत जल्दी ठीक हो जाता है सब। तो आज के दिन खास मैं तो यही एक शुभ बधाई देने के लिए आया सब भाई बहनों को, कि सीजन का क्या जी, लास्ट टूब की क्या बोलते हो, लास्ट टूब की है ये। तो आज के दिन जो ज्ञान स्नान करेंगे बाबा के सन्मुख बैठ करके, वो तो सबसे महान आत्माएं बन गई फिर तो। तो बाहर जब जाएंगे ना, तो महान आत्माओं के दर्शनों के लिए जैसे लोग तरसते हैं, आप सबको ढूंढने लगेंगे कि कहां हैं वो सब महान आत्माएं, हम उनके दर्शन तो करें जिन्होंने भगवान को सन्मुख देखा है, सन्मुख सुना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी गहरी बात है, अमूल्य बात है, इस बात को रियलाइज करना कि हम सब उसी पहचान से बाबा के सामने आकर के बाबा से मिलन मनाने के लिए आए हैं। और इस मिलन के अंदर, इस मिलन के अंदर हम सब आत्माओं का अपना भी सो कल्याण है, और उसके साथ साथ में जैसे बाबा के महावाक्य सुबह को सुने कि हमारे जो शुभ वाइब्रेशन है, शुद्ध वाइब्रेशन है, शुद्ध प्रकंपन है, वो सारे विश्व को भी पावन बनाने में बहुत बहुत मदद करते हैं। तो जिन भाई बहनों ने इस बात का अपने जीवन में लक्ष्य रखा है कि मेरा एक भी कोई ऐसा व्यर्थ संकल्प ना हो जो बाबा के कार्य में विघ्न बन जाए, क्योंकि अगर प्रकंपन मेरे अच्छे नहीं होंगे, सहयोग देने वाले नहीं होंगे, तो एक प्रकार से विघ्न हो जाएगा वो। तो बाबा के कार्य में विघ्न रूप कभी ना बने, वैसे सुनते हैं मोटे रूप में, लेकिन उसकी गहराई में जब जाते हैं तो समझ में आता है कि उसका एक ही तरीका है, जो बाबा ने बार बार पक्का किया, हर एक मुरली के अंदर पक्का किया है, बच्चे बाकी सब बातों को एक किनारे करो, मन मेरे साथ लगाओ, मन मना भाव, मन मना भाव, मन मना भाव, उसका और कोई भाव नहीं है। अगर क्या कहते हैं, मन चंगा तो जग चंगा, यही कहते हैं ना। तो मन को शुद्ध रखना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी, खासकर बाबा के बच्चों की। बाकी दुनिया की बात इतनी नहीं है, लेकिन जिन्होंने बाबा को पहचाना है, जिन्होंने निश्चय किया है, जिन्होंने इस चीज को अपनाया है, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य रखा है कि मुझे मनुष्य से देवता बनना है, और देवताओं में भी बाबा कहते हैं सिर्फ देवता नहीं बनना है, देवताएं तो सब बन जाएंगे जो भी ज्ञान सुन रहे हैं, एक दिन भी सुना तो भी बनेंगे, लेकिन नहीं, नर से श्री नारायण बनना है, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। इतना ऊंच पद पाने वाले जो हैं वो कितने महान महान भाग्यशाली हैं। आप सबको बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ओम शांति। ठीक है, अब अमीरचंद भाई जी आपको अच्छी तरह से और रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि गर्मी का टाइम है ना, थोड़ा तो गर्मी में क्या पिलाएंगे, नींबू शरबत। अच्छा, किसी को कोई प्रश्न तो नहीं है? मेरे से कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। ठीक है,
सब खुश है, प्रसन्नचित है,
ये सारे के सारे प्रसन्नचित हैं कि आपने दर्शन दिए, कोई प्रश्न नहीं है।
क्या कहते
हैं, आदरणीय भ्राता जी का बहुत बहुत तहे दिल से आप सब भी शुक्रिया कर रहे हैं ना, बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे बीच आए।
अच्छा।
और आपने हृदय के अपने भाव रखे।
भाई साहब बता रहे हैं कि सभी प्रसन्न चित्त हैं, जो प्रसन्न चित्त होते हैं उनके प्रश्न नहीं होते। आप आ जाओ यहाँ, आप जितनी डॉक्टर ने छुट्टी दी है उस हिसाब से अब आपसे मैं इतनी इतना देर मिल सकता हूं। मिलने को तो मैं बैठा रहूं, डॉक्टर कोई है नहीं आसपास, लेकिन बाद में वो कहेंगे भाई साहब आपको आधे घंटे से ज्यादा नहीं बैठना।
शाम को भी बैठे,
फिर शाम को
बैठे, आराम से उठा।
बहुत ही जल्दी भाई साहब ठीक हो करके हमारे बीच पुनः एक एक घंटे बैठेंगे, अन्यथा आप योग की अनुभूति इतनी सुंदर कराते थे कि पूरा पूरा ये क्लास यात्रा कराता था परमधाम की। हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि शीघ्र से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ लें और फिर हमको वो अनुभूति कराएं।
कंफर्टेबल नहीं, ठीक।
अभी हम अपने बीच शेरे पंजाब भ्राता अमीर चंद जी की वाणी का लाभ लेंगे।
ओम शांति, बड़े प्यार से बोलो ओम शांति, ओम शांति। जो विषय मुझे दिया गया है वो तो अनुभव है अपना, ब्रह्मा बाबा की त्याग और तपस्वी जीवन हमने अपनी आंखों से देखा है। आप भाई बहनों ने भी बहनों के माध्यम से सुना होगा या ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ी होगी। सबसे पहली बात, आज जो हम सब ने निश्चय किया और देखा, कितनों को देखा आज हमने इस ज्ञान मार्ग में चलते हुए, जब हम आए ज्ञान भी सुना और सामने सबको ज्ञान में चलते हुए भी देखा। हम भी जब आए 1958 के एंड में, पहले एक बहुत छोटा परिवार था, पर हमारे सामने भी दादियां थी, चाहे उस समय सारे विदेश की तो कोई बात नहीं थी, भारत देश में 11 ब्रांचेस थी और हम केवल एक शिव जयंती का प्रोग्राम साल में किया करते थे, एक फंक्शन सेंटर पर। और उस वक्त जब हैंडबिल छपाते थे तो 11 सेंटर्स के एड्रेस लिखते थे, और जब हैंडबिल लोगों को बांटते थे तो कहते थे हमारी नेशनल संस्था है, 11 ब्रांचेस है हमारी देश के अंदर। तो हमारे सामने भी उस समय 11 सेवा केंद्र तो थे ना, दादियां थी हमारे सामने, उनका जीवन था हमारे सामने, ब्रह्मा बाबा के सामने कौन था? ब्रह्मा बाबा को दिव्य साक्षात्कार हुए ये आपने सुना, पर सामने कौन था? बाबा ने क्या दिया? शिव बाबा ने बाबा को दिखाया, बाबा ने देखा कि सृष्टि का परिवर्तन कैसे होगा, महाविनाश होगा। देखा बाबा ने, आने वाली दुनिया भी देखी, और बाबा का ये आवाज सुने के बच्चे आपको ऐसी दुनिया बनानी है, पर कैसे बनानी, कैसे बनानी? बाबा का निश्चय का आधार क्या है? कौन है बाबा के निश्चय का आधार? कोई सामने नहीं था, इसलिए ब्रह्मा बाबा की पहली विशेषता हमें ये नजर आती है, केवल एक बाबा का, जिसे आज हम कहते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। ये साकार ब्रह्मा बाबा की फर्स्ट मिसाल है कि मेरा तो एक दूसरा है ही नहीं, कोई है ही नहीं कोई दूसरा। वो निश्चय बुद्धि निश्चिंत जिसे कहते, एक बल एक भरोसा, और कार्य क्या करना है, सारी विश्व का परिवर्तन, सतयुगी सृष्टि का निर्माण का कार्य करना। दूसरी विशेषता ब्रह्मा बाबा की हमारे सामने नजर आती है, बाबा का आदेश हुआ शिव बाबा का, और अपना हीरे जवाहरात का कारोबार कालकत्ता के अंदर, अच्छा कारोबार, उस कारोबार को आपने सुना होगा कि आई तार अल्फ की और सब कुछ बे बादशाही, त्याग की स्टेज आप देखिए, त्याग सब कुछ, और सब कुछ इतना जो कुछ भी बाबा को धन संपत्ति जो साधन बाबा ने ओम निवास बनाया था अपने बच्चों के लिए हैदराबाद सिंध में, जो कुछ भी थी बाबा का बना, मैं बाबा का, सब कुछ बाबा का, सब कुछ बाबा की, किसी चीज पर बाबा के लौकिक का कोई अधिकार नहीं, समाप्त कर दिया, हो गया, इतना त्याग। आज हम कहते हैं कि बाबा कहते हैं प्रवृत्ति में रहो, प्रवृत्ति का भी ध्यान रखो, पर बाबा की क्या स्टेज आप देखिए, बाबा का त्याग की स्टेज देखिए। इतना इतना कारोबार, इतना धन संपत्ति, सब कुछ, सब बाबा को समर्पित की स्टेज, समर्पण की स्टेज आप देखिए, मेरा कुछ नहीं अब बाबा का, मैं बाबा का, संकल्प मात्र भी नहीं, त्याग की स्टेज आप देखिए। और हमने बाबा को देखा, एक जैसी वेशभूषा हमेशा रही बाबा की, सिंपल, एक जैसी। एक बार हमें याद है, ठंडी के दिन थे तो बाबा आमतौर पर जो बाबा की ड्रेस है सिंपल धोती पहना करते थे, तो ठंडी के दिन थे तो किसी ने कहा बाबा बहुत ठंडी है तो आप पजामी पहनो, पजामी। तो बाबा ने एक दिन के लिए, हमने सुना कि वो ड्रेस थोड़ी सी कि थोड़ी ठंडी ना लगे, दूसरे दिन ही बाबा ने कहा नहीं, संदेशी के द्वारा संदेश मिला कि ये कौन बैठा हुआ है, एक ही ड्रेस सदा बाबा की रही, और नमित मात्र का पाठ बाबा का इतना पक्का, ये बाबा करा रहा है, बाबा का कार्य है, मैं जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट हूं बस। निमित्त मात्र जिसे हम कहते हैं, निमित्त भाव, ये ब्रह्मा बाबा में देखा, निमित्त भाव, निश्चय बुद्धि निश्चिंत जिसे हम कहते हैं, ये ब्रह्मा बाबा में देखा हमने एकदम, हर हालात में। यज्ञ की वो स्टेजेस भी हमने सुनी जिसे बैगरी पार्ट कहते हैं, 300 से ज्यादा भाई बहने यज्ञ में बैठे हुए हैं, और वो स्टेज आ गई कि दिन का भोजन कैसे बनेगा, बाबा की क्या स्टेज रही, सुना आपने? बाबा ने कहा बाबा भेजेगा, ऊपर वाला भेजेगा। ये उसने था, उसने रचना है, उसकी रचना है। बेफिक्र बादशाह बिल्कुल। और वो दिन थोड़े समय के बाद गुजर गए, पास हो गए, पास हो गए। क्या स्टेज त्याग की, क्या स्टेज रही समर्पण पाते, क्या स्टेज रही ब्रह्मा बाबा की, क्या जीवन बाबा की। तपस्या की स्टेज जब हम देखते हैं, मैंने देखा बाबा को 2:30 बजे बल्कि राधर, हमने ये देखा पांडव भवन में, बाबा के कमरे में देखा बाबा, जैसे कि ऐसे लगता नहीं था कि बाबा नींद कर रहे हैं। कोई किसी वक्त भी अंदर बाबा के कमरे में चला जाता था, आओ बच्चे, रात को भी कोई किसी वक्त चला गया, आओ बच्चे। जैसे बाबा की वो योग की स्टेज, तपस्या की स्टेज, ये नहीं केवल बैठ करके या थोड़े समय के लिए, हर वक्त मन की स्थिति बाबा की, जैसे ये कार्य जो बाबा का है वो, जैसे ये योग तपस्या। 2 दिन पहले आप वाणी में सुन रहे थे, सबने वाणी सुनी होगी कि बच्चे, अच्छा बच्चे चार्ट भेजते हैं, अच्छी बात है, कितने घंटे योग किया, इतने घंटे योग किया। फिर उसके बाद बाबा ने क्या कहा, बाबा ने कहा वो तो अच्छी बात है, पर साथ में ये भी किसी को सुनाया, योग का मैंने क्या, योग किस लिए किया, योग किया किस लिए, केवल अपने लिए? बाबा का कार्य जो है उसके लिए किसको कितना साथ जोड़ा और कितनों को जोड़ा। और उसके बाद बाबा ने ये नहीं कहा केवल संदेश दिया, नहीं, उसके बाद क्या कहा मुरली में, कि जिसको आपने सुनाया उसने फिर कहा, जिसे बाबा सबूत कहते हैं। ये योग, ये भी तो योग है, तपस्या है ना। तपस्या का स्वरूप क्या है? बैठना जरूरी है, बैठते हैं सब, पर तपस्या का स्वरूप क्या है? तपस्या बहना दृढ़ता, संकल्पों में दृढ़ता। और जब हम कहते हैं सफलता का आधार दृढ़ता है, तो इसका क्या मायना है, इसका भाव क्या है? बाबा का क्या देखा हमने? बाबा के संकल्पों में दृढ़ता थी, उसका स्वरूप क्या बना? कि बाबा का तन मन धन संबंध संपर्क जो कुछ भी है सफल, सब सफल। लौकिक भी जो है बाबा का जो है, ये तपस्या का स्वरूप, तपस्या का स्वरूप, तपस्या मैंने दृढ़ता, संकल्पों में इतनी दृढ़ता, ये कार्य संपन्न होगा ही, होना ही है, इसको कहते हैं तपस्या। ये तपस्या है, रह रहे हैं परिवार में रह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बाबा ने कहा है परिवार में रहना है, बच्चे साथ रह रहे हैं, अच्छी बात है, कारोबार है, अच्छी बात है, पर दृढ़ता सफलता का क्या भाव क्या है बाबा का, कि सब वो बाबा के कार्य में कितना लग रहा, मेरे भविष्य में कितना जमा हो रहा, जो मेरा संबंध संपर्क है उस संबंध संपर्क भी जो है उसमें सफलता का भाव क्या है बाबा का, कि वो भी बाबा के बन जाए, मेरे संबंध संपर्क से मेरे में वो चीज है जो दूसरे भी बाबा के बन जाए, मेरे साथ में रहने वाले, लौकिक में रहने वाले, परिवार में रहने वाले। तपस्या का क्या भाव है, दृढ़ता का क्या भाव है? कोई भी विधि अपना के किसी भी तरीके से बाबा के बन जाए। आज दादियां जब सामने बैठती हैं आकर के, सबको खिंचाव होता है, सब दौड़ते हैं, मैंने देखा सब जगह जगह से, इधर उधर देखता हूं मैं शाम को, सब दौड़ते चले आते हैं, दौड़ते चले आते हैं। दादी हाल में आ गई, दादी हाल में आ गई है, क्या बात है, क्या चीज है दादी में, दादी के थॉट्स में क्या है, सबके लिए क्या है, सबके लिए बाबा के बन जाए, इनका सब कुछ सफल हो जाए, सफल हो जाए, सब सफल हो जाए, इनका भाग्य श्रेष्ठ बन जाए, हर एक के लिए, हर एक के लिए। इसको तपस्या, तपस्या का स्वरूप क्या है, तपस्या का स्वरूप सफलता। मेरा समय, संकल्प, तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, सब कुछ जैसे ईश्वरी सेवा में, ईश्वरी कार्य में जैसे लगता जाए, इसको कहते हैं तपस्या। ये तप है। संतान पैदा करना बड़ी बात है, पर संतान को श्रेष्ठ बनाना बहुत बड़ी बात है, पर संतान को बाबा का बना देना आप देखिए, बाबा का बना देना। एक भाई मेरे पास आया, कहता है पहले तो मेरी बेटी को कहते थे कि ये मेरी बेटी है, जब से वो सेंटर में रहने लगी है, सेवा करने लगी है, लोग मुझे कहते हैं ये उसका बाप है उसका नाम पहले, उसका नाम पहले लेते हैं, मेरा नाम पीछे हो गया। ये है, ये तपस्या है। संकल्पों में दृढ़ता, इतना पॉजिटिव सोच, इतना पॉजिटिव सोच। मुझे याद है एक जगह मैं गया, उसकी तीन बेटियां हैं, तीनों अब सेंटर्स पर रह रही हैं। जब वो कॉलेज में पढ़ रही थी, मुझे उसने अपने घर में बुलाया, मुझे कहने लगी भाई जी इनसे बैठो, इनसे पूछो इनका लक्ष्य क्या है, ताकि हम कुछ प्लान करें ना, कॉलेज में पढ़ रही हैं, हमें सोचना पड़ेगा इनके लिए, इनसे बात करो। उनको बुलाया, तीनों को बिठाया, बात की, तीनों ने क्या जवाब दिया मुझे याद है। तीनों कहने लगी आपने ये सवाल ही क्यों पूछा हमारे से, आपने बचपन से जिस तरीके से हमें भोजन खिलाया है, पवित्र भोजन, जिस ढंग से आपने हमारी पालना की है, हमारे अंदर का संकल्प कोई दूसरा उठ सकता है, ये आपको कैसे क्वेश्चन हुआ। ये तपस्या है, ये तपस्या है। कहती आपको निश्चय होना चाहिए अपने पर, ये प्रश्न ना पूछो, हम बाबा की हैं, बाबा की रहेंगी, चाहे कॉलेज में पढ़ रही हैं, फिर क्या हुआ। हमारे पास एक परिवार है, चार भाई, एक उनकी बहन है जामनगर में, सुषमा बहन, माता पिता अंबाला में, साकार बाबा से चार बच्चे एक बेटी मां बाप लेके आए, बाबा से मिले लास्ट में, बाबा ने कहा ये सप्तऋषि हैं। छोटे थे चारों भाई, 68 में वो अमर हैं सातों। मां बाप चले गए, शरीर तो जाएगा, और आज उनके जो बच्चे हैं उनसे अनुभव पूछो, उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, हमारी मां जैसी मां नहीं, जिसने हमें इस योग्य क्या, हमें संकल्प ही नहीं पैदा हुआ दूसरा, दूसरी दुनिया में जाने का। अंत तक मां बाप की सेवा की उन्होंने, बाबा के। ये तपस्या है, तपस्या। तपस्या का भाव क्या है, हम बैठ गए योग लगा रहे हैं, वो तो सारे लगा रहे हैं, घंटा लगा रहे हैं, दो घंटे लगा रहे हैं, चार घंटे लगा रहे हैं, अच्छी बात है। तपस्या में ना संकल्पों में इतनी दृढ़ता, इतनी शुद्धता कि ये बाबा के हैं, बाबा के, इनको बाबा का बनाना है, बाबा का बनाना है, बाबा का बन जाए मेरा, ये सफल हो जाए, सफल हो जाए। किस कार्य में जाएगा, नहीं तो कहां जाएगा। इसलिए अपना तन मन धन समय संकल्प सब चीजें सफल, इसको तपस्या, तपस्या का स्वरूप ये है, इसे कहते हैं तपस्या। वो वातावरण पैदा करता है वृत्ति से, वातावरण सबके लिए, सबके लिए पॉजिटिव, पॉजिटिव बाबा के, बाबा के कहां जाएंगे, कहां जाएंगे बाबा के। इसलिए अपने लौकिक को अलौकिक बना देना, बाबा का बना देना, अपने तन मन धन समय संकल्प को बाबा के कार्य में लग जाए, सफलता मिल जाए। पहले हमें याद है जब हम नए नए आते थे कि शरीर छोड़ता था उसका भोग लगाते थे, बहने संदेशी ध्यान में जाती थी, वतन में बाबा उसकी आत्मा को दिखाते थे, इमर्ज करते थे। वो दिन हमें याद है, मुझे एक सीन याद रहता है। एक भोग लगाने लगी बैठी बहन बाबा के पास गई, बाबा को आत्मा इमर्ज की, रो रहा था वो बच्चा बाबा के पास वतन में, रो रहा था। बाबा ने पूछा क्यों रो रहे हो, कहते मेरा संकल्प था मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मेरा शरीर छूट गया, कुछ भी नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं, पश्चाताप के आंसू। कईयों की अंदर प्लानिंग चलती रहती है, ये होगा, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, सफलता किनको मिलती है, सफल किनका होता है। इसलिए ब्रह्मा बाबा की जो स्टेज हमने देखी, फरिश्तापन की स्टेज देखी, क्या कमाल की, क्योंकि सब कुछ सफल, बाबा का सब सफल, गया ही नहीं किसी दूसरे कार्य में, लगा ही नहीं बाबा का। इसलिए ब्रह्मा बाबा में जो स्टेज थी त्याग और तपस्या की, कमाल की स्टेज थी। और हमने देखा कई मिसाल हमारे सामने हैं बाबा के, मैंने देखे टूट निश्चय, एकदम निश्चय बुद्धि का, एकदम। कई बार हम लोगों ने देखा कि बाबा के प्रोग्राम बनते थे बाहर जाने के, बाबा बॉम्बे भी जाते थे, दिल्ली में भी जाते थे, कई बार बाबा बाहर जाते थे। एक बार बाबा का प्रोग्राम बॉम्बे का बना हुआ, बहुत सब जगह बुक हुई, सब प्रोग्राम बने हुए, बाबा ने जाना था, एंड लास्ट मोमेंट पर संदेशी के द्वारा संदेश आ गया नहीं जाना, बस एकदम बाबा का जैसे के नहीं, नहीं बचे, बस। लास्ट दिनों में मैंने बाबा को देखा, बाबा का आना जाने का प्रोग्राम भी कम हो गया था, कहीं नहीं आना जाना था, जैसे लाइट में फरिश्तापन की स्टेज, ऐसे लगता था जैसे बाबा की संपन्नता और संपूर्णता की स्टेज नजदीक नजर आ रही। इसलिए ब्रह्मा बाबा के समान जो स्टेज है, हम सुनते तो रोज ही हैं, फॉलो ब्रह्मा बाबा, फॉलो करो, मगर जो उनकी स्टेज जब हम देखते हैं अंदर में, ये त्याग नहीं है, ये जिसे हम रोज त्याग समझते हैं, ये क्या त्याग, क्या त्याग किया हम लोगों ने। कोई कहे नींद का त्याग, नींद का त्याग किया या समय सफल किया है? कोई कहे भोजन शुद्ध किया, वो त्याग, वो त्याग किया या हेल्थ ठीक की है, स्वास्थ्य अच्छा हो गया है, ये कोई त्याग है? अच्छा, जो हम हमारा समय बर्बाद हो जाता था, सिंपल रहना सीख लिया, तो समय का जो हमारा धन की शक्ति थी वो त्याग है, वो तो बचत हो गई है। ये सारी चीजें त्याग नहीं है, त्याग किसी है जो बाबा ने लेटेस्ट कहा, अभी दो दिन पहले आपने सुना, अंतिम आहुति, अंतिम आहुति क्या बाबा ने बताई, मैंपन का त्याग, मैंपन का जो सूक्ष्म बाबन का ये लास्ट अंतिम होती है कि बचे, और मैं और मैंपन और मेरापन आपस में लिंक है, दोनों का बहुत गहरा संबंध है। आप देखिए इसके ऊपर अंदर विचार करके देखिए कि जो बाबा कहता है मैंपन का त्याग का बाबा का भाव हम समझे। मुझे वो सीन याद आता है 1987 में पहली बार पांडव भवन में हरिद्वार के महामंडलेश्वर को बुलाया गया। सारी संस्था में हमारे इस विद्यालय की हिस्ट्री में बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ा 1987 में ओम शांति भवन में हरिद्वार के महामंडलेश्वर पहुंचे थे। महामंडलेश्वरों को ग्रुप में बुलाना अपनी स्टेज पर पहली बार 1987 में। अब वो लोग आ गए महामंडलेश्वर, उनको एक बात बहुत विचित्र लगी जब उन्होंने दादी जी से मिले, दादी प्रकाशमणि जी से उनके संबंध में आए। मुझे कहने लगे अजीब बात है, जो आपकी दादी चीफ है उनका कोई विशेष आसन नहीं है और विशेष कोई वेशभूषा नहीं। हमें तो पता ही नहीं लगता कि दादी प्रकाशमणि कौन सी है, दादी जानकी कौन सी है, दादी मनोरिंद्रा कौन सी है, दादी दूसरी दादियां कौन सी है, तो किसी का कोई अलग है ही नहीं उनका। इतनी आप देखिए कि ये क्या स्टेज है, इसे कहते हैं मैंपन, मैंपन का त्याग जैसे है ही नहीं। और उससे बड़ी बात उनको जो लगी, बहुत विचित्र बात लगी दादी की, कि मुझे दादी ने बुलाया, अमीरचंद भाई सब आराम से ठहर गए हैं, उनको सुखधाम में ठहराया था। मैं कहा हां दादी जी बड़े आराम से ठहर गए हैं। कहती है सब किसी को कोई तकलीफ तो नहीं? मैंने कहा नहीं कोई तकलीफ नहीं, मेरा विचार है कि मैं एक चक्कर गाऊं महात्माओं के पास रात को 10 बजे। मैं कह दादी जी ठहरो, ये तो महात्मा लोग हैं, मैं पहले जाता हूं उनको बताता हूं कि दादी जी आ रही है। मैंने कहा दादी जी हम सब देख रहे हैं, सब प्रबंध देख रहे हैं। कहते नहीं नहीं मेरा विचार है मैं चक्कर लगाऊंगी, जाके देख पूछूं मैं सबसे, ठीक है प्रबंध ठीक है। और दादी जी गई उनके पास और ये बात उनको इतनी अपील की, उनके मन को छुई कि चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस खुद पता करने आ रही है कि हमारी महाराज हाल पूछने खुद चली आ रही है। कितनी सिंपल सिटी आप देख, कितनी सिंपल, ये क्या चीज है, मैंपन का त्याग। अहम है ही, मैं चीफ हूं और चीफ होकर के मैं उनके पास जाऊं, वो मुझे मिलने पास आए ना, मैंने उनको बुलाया ना, वो मेरे पास हमारे पास आए, नेवर। और एक महामंडलेश्वर को ये बात दादी की सबसे ज्यादा टचिंग लगी कि वो मैं उनको मिलाने के लिए ले गया दादी जी के पास, दादी जी के रूम में वो बैठे हुए थे, दादी जी बातचीत कर रही थी, एक बहन को कुछ काम था दादी जी से, दादी जी ने उसको बुलाया इधर आओ क्या बात है। और दादी जी ने कहा वहां मेरे साथ ही बैठ के, उसको दादी जी ने अपने साथ बिठा लिया, बिठा के बात करने लगी, वो बात करके चली गई। वो महामंडलेश्वर ऐसे ऐसे करने लगा ऐसे ऐसे, मैं क्या क्या हुआ, कहते हैं वो जो वो छोटी सी बहन को दादी जी ने अपने अपने आसन पर बिठा लिया, हमारे आसन पर नहीं कोई बैठ सकता। ये देखिए निर्बाधता कहां हमारे अंदर, वो देखिए क्या चीज है, क्या चीज है ये है मैंपन का, है ही नहीं मैं, सब बाबा का कार्य सब मिलकर के हम कर रहे हैं, इसलिए सबसे अंतिम मुहूर्ति ये है त्याग, बाकी सब कुछ नहीं है। ये जो चीज है, कौन बड़ा कौन छोटा क्या है, घर में रह रहे हैं 2, 4, 5, 7 जने रह रहे हैं, अच्छा फिर क्या हुआ, इतनी सूक्ष्म ये चीज है कि अंदर में ये भाव ही खत्म हो जाए, भाव खत्म हो जाए, बाबा के बच्चे हैं सब मिल करके रहते हैं, सब कारोबार करते। लास्ट में मैं 2 शब्द कह के समाप्त करूंगा, हमारे यहां भी मैंने मिसाल देखे। मैं एक जगह पर गया आंध्रा में है, मुझे वो जगह का नाम भूल गया, एक भाई मेरे पास आया, उसकी ये दवाइयां बनाती हैं, वो छोटी सी फैक्ट्री है, मेडिसिन्स बनाती हैं। मुझे कहने लगा, भाई जी आपको मैंने अपनी फैक्ट्री दिखानी है। मैंने कहा, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने रात को निकल के दूसरी जगह पर पहुंचना है, नाइट ट्रैवल करनी है बाई कार। कहता है, मेरी फैक्ट्री देखे बिना नहीं जा सकते। रात को 11 बजे मैं उसकी फैक्ट्री में पहुंचा, मैंने देखा कि बाबा का बच्चे होकर के भी कितनी अंदर वो उनका स्वरूप धारणा उन्होंने बनाई है, ये देखने वाला है। कहता है कि मैं जब से बाबा का बना हूं, ये फैक्ट्री बाबा की हो गई, इसमें 400 लोग काम करते हैं, 400 लोग ये बाबा के, मेरा प्रॉफिट नहीं है, इनका प्रॉफिट है। सारा मुझे बोर्ड दिखाए, हर महीने इनकी ब्लड चेकिंग होगी, इनकी मेडिकल चेकिंग होगी, इनके बच्चों की पढ़ाई को इतना मिलेगा, इनके ये सब चीज, सबको जो प्रॉफिट है सारा बांटा जाता है। और जब मैं गया तो गेट पर उसने घंटी बजाई, कहता चाबियां गेट की इनके पास है, मेरे पास नहीं है, मैं मालिक नहीं हूं। 400 लोग ही सुबह के समय आके मेडिटेशन करते हैं, फिर काम शुरू करते हैं, किसी की कोई चेकिंग नहीं होती। जो उनकी रोज चेकिंग होती थी, वो दवाइयां नहीं ले जाए, वो ना ले जाए, चोरी ना करे। कहता है, फैक्ट्री इनकी है, कौन ले जाएगा, कोई नहीं ले जाता। ये क्या चीज है? ये है योग का प्रयोग, ये है पॉजिटिव थिंकिंग, ये है विश्वास, ये है निमित्त भाव, ये है निर्माण चित्त, इसका स्वरूप इनका। बस जिसमें विश्वास रखोगे वो विश्वास का देगा। इसलिए त्याग और तपस्या का स्वरूप जीवन में नजर आए तब ये कार्य बाबा का आगे बढ़ रहा है, ये वो स्वरूप नजर आ रहा है। भाई बहनों को जहां भी देश विदेश में जाओ, आपको ये विद्यालय की क्या विशेषता है, दादियों की क्या विशेषता है, वैल्यूज का स्वरूप नजर आने लगता है। दो दिन पहले मैंने यहां पर देखा, हमारे मृत्युंजय भाई ने यहां पर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, यहां पर उदयपुर से सारा वैल्यू एजुकेशन का प्रोग्राम चला। मैंने गीतांजलि इंस्टीट्यूट है वहां पर यूनिवर्सिटी लेवल का, उसके साथ MOU साइन हुआ। अब ये कार्य देश विदेश में बढ़ता चला जा रहा है। दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन जो कुछ काम कर रही है। बाबा ने कहा है, अब लोग कहने लगे हैं ये भी कुछ है, पर बाबा ने कहा अब टाइम आएगा, यही है, यही है। ओम शांति।
सब करके खुद को छिपाया।